वो क्या बयान करते हैं कि रहमान के लिए बेटा, फजरहुम, ए नबी अब छोड़ दें इनको, इनको छोड़ दें, यानी ये जो जो बातें कर रहे हैं कुफरिया बातें शिरकिया बातें इनको छोड़ दें, यहूदू बहसें करें, ये पानी में उतरने के लिए आता है डीप उतर जाना, तो ये यही करते थे ना, बहसें कर रहे हैं इसके ऊपर, फजूल बातें कर रहे हैं, वही अलाबू अल खेलते रहे, यानी अब इनको आपने बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आप इनके रवैयों के ऊपर ना आप मलाल ना करें, आप ना गम करें, इनको बहसें करने दें, इनको बातें करने दें, इनको खेल तमाशे करने दें अपनी जिंदगी में, हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युआदून, अल्लाह ताला खुद ही इनसे निपटेगा, जिस दिन तक अल्लाह ताला के साथ इनकी मुलाकात नहीं हो जाती उस दिन तक इनको छोड़ दें, यानी फिर अल्लाह ताला खुद ही सवाल कर लेगा, आप अपना काम करते जाएं, आप इनके पीछे ना पड़ें, यानी आप हुज्जत तमाम हो गई ना, अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर देता है, तो ये फजूल कामों में लगे, या लाभ क्या है फजूल काम, इधर उधर खेलते फिर रहे हैं फजूल कामों में लगे हैं, आपने बता दिया आपका काम मुकम्मल हो गया, और वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए अपना काम करके, अगर फिर भी हम खेल तमाशों में लगे रहे हैं, बहसों में पड़े रहे हैं, दीन में बहसे कर रहे हैं, मीन मेखे निकाल रहे हैं, ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, क्योंकि अमल का कोई इरादा ही नहीं है, तो अब कैसे इस चीज को पीछे करें, झुटलाएं कैसे, कैसे अमल ना ही करना पड़े, तो इसलिए कभी कुछ शोशे लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ बातें करते हैं, वह लजी फिस समा इला हूँ फिल अर्द इला, वो अल्लाह तो आसमान में भी इला वही है और जमीन में भी इला वही है, आसमानों में भी उसी की हुकूमत और इबादत के लायक, इला कौन होता है जिसकी इबादत की जाए, कौन है जो ये दावा कर सकता है कि आसमानों में वो इला है, पूछे मुशरिकीन से जिनको भी कोई अल्लाह का शरीक ठहराता है, ठहराते हैं वो, क्या ये कह सकते हैं कि हम आसमानों पे हमारी हुकूमत है, आसमानों में भी अल्लाह ताला की हुकूमत और वही इला है, और जमीन में भी वही इला है, वहुवल हकीम अल अलीम, यानी जमीन में भी कोई और इलाह नहीं, सारा कब्जा कुदरत उसका है, बाज लोग कहने लगते हैं ये बात को समझे, बाज लोग कहने लगते हैं खिजर अलैहिस्सलाम तो पानियों के ऊपर हुकूमत है और उनको पुकारो जिस वक्त तूफान आते हैं, अल्लाह ताला की हुकूमत पानी पे भी है और इलाह वो जमीन, सारी जमीन का इलाह वही है, कोई और नहीं है, यानी इबादत के लायक वही है, मांगना है तो उससे मांगो, पुकारना है तो उसको पुकारो, झुकना है तो उसके आगे झुको, ये इलाह ही इस काबिल होता है कि उससे दुआएं की जाए, उससे हाजतें मांगी जाए, वो हिकमत वाला है और इल्म वाला है, और कोई और अल हकीम और अल अलीम नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत हिकमत किसी के पास हो सकती है, थोड़ा बहुत इल्म हो सकता है, वो भी कहीं से लिया हुआ, अल्लाह ताला का इल्म अपना है, उसको किसी ने नहीं दिया, वो खुद हर चीज जानता है और उसका इल्म हमेशा से है और उसका इल्म लिमिटेड नहीं है और ना ही उसकी हिकमतें, وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, और बाबरकत है वो जात, यानी अल्लाह ताला बाबरकत है, उसके लिए बादशाहत है आसमानों की जमीन की और उनके दरमियान, बाबरकत होना, तबारक का मतलब क्या, एक तो बरका कहते हैं खैर और भलाई को, खैर कसीर को, खैर कसीर, तो उसकी जात खैर और भलाई का मजमुआ है, उसकी जात में सारी खैर है, बियदि कल खैर, वो खैर ही खैर है, ठीक है, खैर व भलाई वाली जात, और दूसरा बरतर और अजीम, तो उसकी जात तबारक है, तीसरी बात इसमें दवाम का माना भी है, हमेश की का, कि वो हमेशा बाकी रहने वाली जात है, जब हम एक दूसरे को कहते हैं ना आपको मुबारक हो, तो हम असल में उसके लिए खैर मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि ये आपकी जो चीज है वो हमेशा कायम दायम रहे, ठीक है, तो अल्लाह की जात है तबारक बाबरकत, और अल्लाह ताला की जात वो है जो बादशाहत रखता है आसमानों की और जमीन की और जो कुछ उनके दरम्यान है, ये भी आ गया यहाँ पर कि जो कुछ उनके दरम्यान है, अब देखिए ना, आसमान और जमीन के दरमियान क्या कुछ है, इसको डिफाइन करें इंसान, वो तो पता भी नहीं है क्या कुछ आसमानों और जमीन के, लेकिन अल्लाह ताला की हुकूमत है इनके ऊपर, सबके ऊपर। फिर जब इंसान इस चीज पे यकीन रखता है ना, तो उसके बाद वो फिर किसी और दर पे जाके झुक नहीं सकता। इसको अल्लाह ताला की अजमत का ख्याल आता है कि अल्लाह तू इतना अजीम, एक छोटे से मुल्क का बादशाह हो ना, हम उससे इतने इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ जी, वो को सदर है बेचारा, वोटों से बना होता है, भीख मांगता है वोटों की, और उसके बाद फिर वो मुश्किलों से कभी कभी 4 साल कभी 5 साल के लिए बनता है, लेकिन हमारे दिल रोब से भर जाते हैं उसके लिए। और किसी मुल्क का बादशाह हो तो हम थर थर कांपते हैं, हाँ जी ये बादशाह, इसके खिलाफ कोई बात कर दी ना तो ऐसे जगह ले जाके जेल में डालेंगे कि ऐसी जगह फेंकेंगे कि फिर उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता, ये फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, पूछने वाला नहीं होता, पता ही नहीं चलता ऐसा गायब होता है, हम फिर इतना कांप जाते हैं। अच्छा, फला मुल्क का बादशाह इतना पावरफुल है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वो बादशाह आसमानों का और जमीन का और जो उनके दरमियान है, तो दिल रोब से क्यों नहीं भरता, दिल झुकता क्यों नहीं, डरता क्यों नहीं कि नाफरमानी उस बादशाह की, हुकूमत उसकी है, सब टोटल कंट्रोल उसका है, वो जात कितनी बड़ी है जो आसमानों पे हुकूमत करे और जमीन पे और जो कुछ उनके दरमियान है। तो ईसा अलैहि सलाम को इसमें कहना कि वो खुदा है, वो कैसे खुदा हो सकते, खुदा तो वो है जिसकी बादशाहत इतनी बड़ी, वाइंदा हो इल्मु सा, उसके पास कयामत का इल्म है, खास तौर पे ये इल्म की बात, उसके पास तो हर चीज का इल्म है, लेकिन यहाँ पे इसलिए ज्यादा इस चीज को मेंशन किया गया कि ये इल्म वो है जो किसी और जी नफ्स जी रूह के पास नहीं, ना किसी फरिश्ते के पास, ना किसी पैगंबर के पास, ना किसी वली के पास, किसी के पास है ही नहीं, ये सिर्फ उसके पास है, क्योंकि ये गैब की चाबी है, गैब की चाबी, और गैब की चाबियां सिर्फ उसके पास है। तो जिसको यही ना पता हो कयामत कब आनी, वो खुदा कैसे हो सकते हैं, वो बताए ना कब आनी। हमारे यहाँ भी किसी ने कह दिया अभी जब 12/12/12 था तो ये डेट जो थी ना इसके ऊपर कयामत आनी है, कुछ लोगों ने तो छुट्टी भी ले ली, शायद पता नहीं घर बैठ के सोचते थे कयामत से बच जाएंगे, फिर कुछ भी ना हुआ, और बहुत उन्होंने कहा जी इसके ऊपर इतनी इसकी पेशीन गोईयां हैं जो ठीक हुई हैं, इस बंदे ने इतने हजारों साल पहले ये किताब में लिखा था, नहीं किसी के पास भी साथ का इल्म नहीं, इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वला यमलिकुल्लदीन यदउन मिन दूनी शफाअत, और नहीं मालिक शिफात के, कौन कौन नहीं है मालिक शिफात के, अल्लदीन यदउन मिन दूनी, जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, वो शिफात नहीं कर सकते, कयामत के दिन तो कोई बोल ही नहीं सकेगा, सूरह नबा में यही है ना, कोई बोल भी नहीं सकेगा उस दिन, सिर्फ एक आवाज होगी हम की, सांसों की आवाज आ रही होगी बस, कोई जुर्रत नहीं करेगा, सिफारिश करना तो दूर की बात है, कोई कोई बुच बोल एक गई नहीं मुंह से, सिर्फ जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे वो बोल सकेगा। इतने वहशतनाक दिन में जिस दिन इंसानों को अपनी पड़ी हो कि नफसी नफसी की पुकार हो हर तरफ, इवन ये कि फरिश्ते और पैगंबर भी उस दिन हर तरफ कांप रहे हैं, उस दिन कौन सोच सकता है कि हाँ जी अपनी मर्जी से हम सिफारिशें करेंगे, हम ये कह देंगे, हम वो कह देंगे, वो तो कोई भी जिनकी ये इबादत करते हैं वो तो सिफारिश का इख्तियार ही नहीं रखते। अगर कोई ईसा अलैहि सलाम को पुकारता है तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमा दिया, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा बना मरियम अअंत कुलता लिन्नासि इत्तखज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, जब उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा ए ईसा इब्ने मरियम क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना ले, तो ईसा अलैहि सलाम तो अल्लाह ताला से माफिया मांगेंगे, या अल्लाह मैंने नहीं कहा, तुझे मैंने कहा होता तो तुझे पता होता, या अल्लाह मैं कैसे कह सकता था, मुझे तो ये दे भी नहीं देता, मेरे तो ये लायक ही नहीं है, शिफात करना कैसे होगा। वो कहते हैं जी ईसा अलैहि सलाम हमें बचा लेंगे, उस दिन वो सूली चढ़ गए थे ना, अब इसीलिए चढ़े थे कि कयामत के दिन हमें वो लेके जाएंगे जन्नत में, तो चाहे ईसा हो चाहे उजैर हो चाहे फरिश्ते हो चाहे कोई भी और माबूद बनाए हुए इन्होंने झूठे सितारे हैं या सूरज, या सूरज को भी लपेट के उस दिन जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, ताकि इनको हसरत हो कि ये देखो इसको हम सोचते थे कि ये हमें बचाएगा, इससे हम मांगते थे। वो उस दिन क्या हाल होगा इंसानों का भी और पैगंबरों तक का। और ये सोचते हैं कि ये हमारी सिफारिशें करेंगे, हमें बचा लेंगे, हमें उस दिन हम इनका दामन पकड़ लेंगे, ये औलिया अल्लाह हैं, ये अल्लाह के पास बड़े पहुंचे हुए हैं, ये बड़े प्यारे हैं, ये फलां हैं। इल्ला मन शाहिदा बिल हक व हुम यालमून, सिवाय उसके जिसने हक का मुशाहिदा किया हो, हक की गवाही, जो वो जो हक के साथ हो, मन शाहिदा जो गवाही दे हक के साथ, वह हम यालमून और वो जानता भी हो, उसके पास इल्म भी हो, जो हक बात कहे यानी, और उसके पास इल्म भी हो, जो साहिब इल्म। और ये कौन होगा जिसको अल्लाह ताला उस दिन चाहेगा, उसको ये शर्त देगा कि तुम शिफात करो, और वो शिफात के लिए फिर खड़ा होगा जो हक की शहादत देगी। यानी जो वाकई इस बात की शहादत देगी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये मतलब है। हक क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो हक की गवाही देने वाले होंगे और जो जानते भी होंगे, इनके पास इल्म भी होगा, यानी यकीन होगा उनको। वला इन सअलतहुम, और आपको पता है शिफात का, मैंने अकीदे का पहले भी आपको बताया हुआ कि जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा उसके लिए शिफात का इजन देगा, और जिसको चाहेगा कि तुम शिफात करो वो ही शिफात कर सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के ऊपर बहुत सारे लोग तकिया किए हुए हैं कि वो इस पे डिपेंड करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमा दिया था कि याद रखना मैं तुम्हें इस हाल में ना पाऊंगा, तुम्हारे सर पे बकरी हो जो ममिया रही हो यानी चोरी की हो, तो तुम उसको लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं उस दिन कुछ कर सकता। ये ना हो कि तुम्हारे तुमने खयानत की चीज कोई की हो, खयानत की हो किसी चीज में और तुम उसको लेकर आ रहे हो, और फिर तुम कहो कि मेरी शिफात करो, तो मैं नहीं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। ऐ फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम अपने लिए खुद कुछ करना, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आ सकता। ऐ मेरी पुप्पी सफिया, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ नहीं काम आ सकता। वो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा, यानी खुद उठ के पैगंबर भी अपनी मर्जी, अगर उनको शिफात का हक भी दिया जाएगा लेकिन वो खुद अपनी मर्जियों से नहीं कर सकेंगे कि मेरा दिल कर रहा है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की शिफात कर देते, ये सोचते नहीं है आप? इब्राहिम अलैहि सलाम अपनी बाप की शिफात कर देते, खलीलुल्लाह है, नहीं कर सकते। जब वो कहेंगे भी कि या अल्लाह मेरा बाप, या अल्लाह मेरा बाप, इससे मेरी कितनी बेइज्जती हुई, और तूने कहा था मुझे आज इज्जत देगा, मेरा बाप इस जहन्नुम में ले जाया जाएगा, इस सूरत में होगा, तो मैं कैसे, मेरी तो इसके अंदर इज्जत तो नहीं है। अल्लाह ताला उनके बाप को बिज्जू की शक्ल दे देगा और उसको टांगों से घसीट के जहन्नुम में डाला जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन लोगों के खिलाफ भी गवाही देंगे, इन्होंने कुरान को छोड़े रखा था। तो शिफात भी इस चीज के ऊपर ना सोच के बैठ जाए, हमारी तो शिफात हो ही जानी है उस दिन, लिहाजा हमें कोई परवाह नहीं है। वला इन सअलतहुम मन खलकहुम, जब इनसे पूछा जाता है कि किसने तुमको पैदा किया, ला यकूलुन्नल्लाह, तो वो जरूर कहते हैं अल्लाह ने। इसलिए बाद मुफस्सरीन लिखा है कि जो मुशरिकीन है मक्का, ठीक है वो भी मुशरिक थे, आज का भी मुशरिक है, अगर मुशरिकों में कंपैरिजन किया जाए, शिर्क तो सभी बुरा है, सभी बुरा है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि किसका शिर्क ज्यादा बड़ा है, तो आज के मुशरिक का ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उस वक्त का मुशरिक फिर भी कहता था कि मुझे पैदा किया तो अल्लाह ने, आज का मुशरिक तो ये भी नहीं कहता। तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने, अल्लाह ताला के वजूद को वो तस्लीम करते थे, ये प्रॉब्लम नहीं था। हम ये सोचते ना वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को एक नहीं मानते थे, ये कहा करें, अल्लाह को नहीं मानते थे तो मानते तो थे, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, और ये भी मानते थे कि अल्लाह ताला हमारा पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है। तो अन्ना यूफकून, फिर कहाँ से तुम धोखा खा रहे हो, यानी क्या मतलब, फिर उसको इलाह क्यों नहीं मानते? फिर इलाह भी तो उसको मानो, इबादत भी तो उसकी करो। तुम मानते हो जिसने तुम्हें पैदा किया, इबादत भी तो उसकी होनी चाहिए। हमारे पर सबसे बड़ा एहसान उसी रब का है ना जिसने हमें पैदा किया। हम तो कुछ भी ना थे, उसने हमें वजूद दिया। बाकी चीजें तो बाद में आती है ना, खाना पीना सोना जागना आंखें कान, वो तो बाद में आते। हमें पैदा किसने किया, उसका सबसे बड़ा एहसान है, और वो ही इस काबिल है कि हम उसके आगे झुके। लेकिन लोग छोटी छोटी बातों पे उससे नाराज हो जाते हैं। उसने मुझे ये नहीं दिया, अब मैंने नहीं नमाज पढ़नी, उसने मेरे ये दुआ नहीं कबूल की, अब मैंने नहीं ये फरमा बरदारी करनी, अब मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। और ये सोचो जिस वजूद को लेके तुम ये कह रहे हो कि मैं उसको छोड़ रही हूँ, ये वजूद किसने तुम्हें दिया? ये तो बिन मांगे ही तुम्हें दे दिया। तुम किधर फिरते जाते हो, किधर धोखा खा रहे हो? वकील ही कसम है इनके कॉल की, इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही की जमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही, और अल्लाह ताला ने अपने रसूल के कॉल की, उनकी बात की कसम खाई है। कौन सी बात जो आगे आ रही है? अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की भी कसम खाई है, और आपके सिवा किसी और की नहीं कसम खाई है, यानी किसी और इंसान की कसम नहीं खाई अल्लाह ताला ने, अपने नबी कसम खाई है। कसम है इनके इस कॉल की, और वो भी कॉल की, या रब्बी इन्नहा उलाई कौम ला यूमिनून, ए मेरे रब ये मेरी कौम है बेशक ये ईमान नहीं ला। तो पैगंबर उनके हक में गवाही क्या देंगे, शिफात क्या करेंगे? वो उल्टा तो उनके खिलाफ गवाही देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह फुरकान में ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे उस दिन, और वो ये गवाही देंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो कुछ भी करते रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो उस दिन हमारी सिफारिश करेंगे, आखिर हम उम्मती जो हो गए। तो आपने क्या कमाल कर लिया उम्मती पैदा होने में? वो तो अल्लाह ताला ने आपको इस उम्मत में पैदा कर लिया, लेकिन आपका इसमें कारनामा क्या था ये बताएं? और नबी के जो वही का पैगाम वो लेकर आए, और उन्होंने सारी जिंदगी अपनी उसी वही पैगाम को फैलाने में और हम तक पहुंचाने के लिए इतनी तकलीफें सही, उसको छोड़ा वह, तो उस दिन फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात तो नहीं पा सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सूरह फुरकान में क्या, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखजू हाजल कुरआन महजूरा, ए मेरे रब मेरी इस कौम ने इस कुरआन को छोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पे वो कहेंगे, या रब इन्होंने मेरी इस कौम ने ईमान नहीं ला के दिया, ये ईमान नहीं रखते थे। ये उनकी फरियाद का अंदाज है, ये उनकी एक शिकायत है, अल्लाह इन्होंने ऐसा किया। अल्लाह हु अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें ये बात भी अल्लाह ताला के नजदीक मतलब कितनी वैल्यू है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की भी कसम खा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ताला के नजदीक कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी आप अब्द ही हैं, अब्द ही हैं, कोई अब्द से ऊपर नहीं उठ गए। अल्लाह ताला ने कुरान में आपको अब्द ही फरमाया कि आप बंदे ही हैं, आप गुलाम ही हैं, आपका मकाम इससे ऊपर कर देना ये भी शिर्क है। फसफ अनहुम वकुल सलाम, ए नबी आप दरगुजर करें इनसे, इनको जाने दें, इनसे एराज करें, इग्नोर कर दें इनको। आपने पैगाम पहुंचा दिया, बस अब आपकी पकड़ नहीं है इसके ऊपर। वकुल सलाम, और कहिए सलाम। ये नहीं कि उनको जाके अस्सलाम वालेकुम कह दें, बल्कि ये उसी तरह है जैसे हमने सूरह फुरकान में इबादुर रहमान की सिफात में पढ़ा था कि वो जाहिलों को कहते हैं सलाम, जाहिलों के साथ बहस मुबासे झगड़े करना, उनके साथ अपने टेम्पर को लूज कर देना, चीखना चिल्लाना, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला अपने नबियों को भी क्या तलकीन फरमाता है, सलाम कहते हैं। यानी सलाम का मतलब क्या कि वो जो भी बात करें उसकी बात, उस बात के जवाब के अंदर आपने उनके लेवल पे नहीं उतरना, बल्कि खैर की बात से जवाब देते हैं, या उनके बात की जवाब में ऐसी बात करें जिससे आप बस उनके शर से महफूज रहें। तो आप तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि फसौफ यालमून, अन करीब वो जान जाएंगे। उनका भी एक वक्त अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, उस वक्त उनको भी पता चल जाएगा कि कौन हक पे था और कौन बातिल पे था। तो जाहिलों के साथ हमेशा बजाय, हम भी ये सीखें कि बजाय हम उनके साथ बहसें करना शुरू हो जाएं और सोचें कि मैं किस तरह से कुछ करूं, क्या मैं लेकर आऊं, किस तरह मैं इनको जवाब दूं, ऐसा जवाब दूं कि जो थप्पड़ बन के लगे। नहीं, आप हक बात कह दें, आगे वो बहसें करें ना, सलाम अलैकुम, बस ये छोड़ देने वाला सलाम है। यानी अब आपने उनको, तो यानी जैसे कहते हैं ना, तुम अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे, बस फिर ज्यादा उनके साथ ना इन्वॉल्व नहीं होने की जरूरत, उनको भी पता चल जाएगा जल्दी। ऐसा नहीं हुआ कि ये बात खुलेगी नहीं कभी, हक का उनको पता चल जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ जाके। अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
الحمد لله جزاك الله خيرا